सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या भगवान कर रहे हैं और हम पिछले दो सिटिंग्स में अर्जुन और भगवान की जो मित्रता है, केवल साधारण मित्रता नहीं, दिव्य मित्रता, ट्रांसेंडेंटल परफेक्ट फ्रेंडशिप, इसकी व्याख्या कर रहे थे। और भगवान दिव्य ज्ञान अर्जुन को केवल इसलिए नहीं सुना रहे हैं क्योंकि अर्जुन एक बहुत काबिल धनुर्धर हैं, भगवान दिव्य ज्ञान अर्जुन को इसलिए नहीं सुना रहे क्योंकि अर्जुन पर उत्तरदायित्व है पूरे युद्ध का, वो भी एक कारण है, परंतु मुख्य कारण जो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, भक्तोऽस्मि मे सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम, कि हे अर्जुन तुम न केवल मेरे भक्त हो बल्कि मेरे सखा भी हो, इसलिए ये उत्तम रहस्य, इसका खुलासा मैं तुम्हें कर रहा हूं। और पिछले श्लोक में अर्जुन ने बड़ी चतुराई से भगवान को प्रेरित किया, या हम ये कह सकते हैं कि दिव्य तरीके से उकसाया अपने विषय में बताने के लिए। तो इसलिए अर्जुन उवाच, अर्जुन का प्रश्न पिछले श्लोक में था और अर्जुन नाम की व्याख्या हमने की थी। कृष्ण जिनके हृदय में पूर्ण रूप से बसे हुए हैं, ऋजु का अर्थ है ऐसी वस्तु जो टेढ़ी मेढ़ी न होकर बिल्कुल सीधी हो, न का अर्थ है रिक्त या खाली, तो अर्जुन नाम का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के समक्ष बिल्कुल सरल हो, जिसमें छल कपट का पूर्ण रूप से अभाव हो, जिसके हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई विचार न हो। तो ये गुण अर्जुन नाम के, इसके वजह से भगवान ने अर्जुन को चुना भगवद गीता सुनाने के लिए। तो तात्पर्य क्या है अर्जुन नाम की इस व्याख्या का? तात्पर्य यह है कि यदि हमें भी अर्जुन के पदचिन्हों पर चलते हुए भगवान का ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में अर्जित करना है, तो अर्जुन के जो गुण हैं, अर्जुन का जो नाम है, वो नाम जो गुण दर्शा रहा है, वो हमारे जीवन में हमें अपनाना है। तब जाकर भगवद गीता जो भगवान रहस्यमय कहे हैं, उस रहस्य का खुलासा होगा। अदरवाइज भगवद गीता विल सिंपली रिमेन टॉप सीक्रेट अनलेस वी आर डिवोटेड लाइक अर्जुन, अनलेस we have nothing but Krishna as our sole person whom we devote our lives to. तो अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि आपका जन्म तो आधुनिक है और विवस्वान इनका जन्म प्राचीन है। तो हमने पिछली बार ये समझा था कि अर्जुन भगवान को प्रेरित कर रहे हैं, तो अभी तुरंत श्री भगवान उवाच से आज का श्लोक प्रारंभ होता है। श्री भगवान उवाच, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच, बहुनी में व्यतीताने जन्मानि तवचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। मुझे याद है पिछले साल लंदन में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछते हुए और अपनी तरफ से कुछ व्याख्या करते हुए मुझे कहा कि मेरे अनुसार भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को जून के महीने में सुनाई। मैंने कहा भाई शास्त्रों में तो ये वर्णन नहीं है। कहा नहीं नहीं। तो मैंने कहा आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे जून के महीने में? तो उन्होंने आज का श्लोक कोट किया कि आज के श्लोक में 4.5 में भगवान कहते हैं अर्जुन को बहुनी में व्यतीतानी कि बहुत से मई के महीने बीत चुके हैं। जन्मानी तव चार जून। तो मैं जब इस श्लोक पढ़ रहा था मुझे याद आ गया। तो उसने कहा कि 4 जून को अर्जुन का जन्म हुआ और अर्जुन के बर्थडे पर भगवान ने गीता सुनाई। जन्मानी तव 4 जून। तो इस श्लोक का अनुवाद वो नहीं है। श्लोक का अनुवाद बहुनी में व्यतीतानी, बहुत से जन्म मेरे और तुम्हारे बीत चुके हैं। जन्मानी तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणी, उन सब को मैं अब तक याद रखा हूं। न त्वम वेत्त परंतप, हे परंतप अर्जुन तुम्हें कोई जन्म वो याद नहीं, मुझे हरेक जन्म की हरेक बात याद है, तुम्हें नहीं। तो श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो हमारे आज के चर्चा के विषय इस प्रकार से हैं, पिछले श्लोक से संबंध, श्री भगवान उवाच शब्दों की व्याख्या, श्री भगवान के अनेक जन्म, अर्जुन के अनेक जन्म, काल के परे भगवान की स्मरण शक्ति, परंतप शब्द की व्याख्या। तो पिछला श्लोक जिसके अंदर अर्जुन का भगवान के गुणगान हेतु प्रश्न, हेतु के साथ प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, और इसलिए अब भगवान आज के श्लोक से अब उत्तर प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसलिए श्री भगवान उवाच से आज का श्लोक प्रारंभ हुआ है। अब यहां पर अब तक हमें यह समझना है कि बहुत ही व्यक्तिगत रूप से कॉन्फिडेंशियली अर्जुन और कृष्ण इनका वार्तालाप चल रहा है। ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंटीमेट टॉक्स चल रहे हैं। पर्सनली भगवान ने अर्जुन का गुणगान किया और अब पर्सनली अर्जुन भगवान का गुणगान करवा रहे हैं भगवान के ही श्रीमुख से। तो बहुत ही इंटीमेट डिस्कशन चल रहा है, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए श्री भगवान उवाच, जब भी भगवान उवाच ये शब्द आए हैं, श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या सबसे पहले की है कि भगवान का अर्थ क्या है और उस श्लोक से भगवान अर्थ का संदर्भ क्या है। तो जैसे आज के श्लोक में कृष्ण उवाच नहीं, गोविंद उवाच नहीं, कन्हैया उवाच नहीं, भगवान, श्री भगवान वाच। तो प्रभुपाद इसकी व्याख्या किए हैं कि आज के श्लोक में एक बहुत ही विशेष गुण, भगवान के तो अनगिनत गुण हैं, परंतु एक विशेष गुण आज के श्लोक में दर्शाया गया है जो केवल भगवान में ही पाया जा सकता है। और वो गुण या गुणों के वजह से जो कुछ उन्होंने कहा वो केवल भगवान ही कह सकते हैं। तो प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से प्रारंभ की है, श्री भगवान उवाच। तो क्या गुण है? भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानि, कि बहुत से जन्म, अनेक जन्म मेरे हुए हैं और अर्जुन तुम्हारे हुए। तब देखिए, कोई भी एक व्यक्ति जन्म किसी का जब होता है तो तुरंत हमारे मन में यह विचार आ जाता है कि फिर मरण भी है। जैसे कि भगवान दूसरे अध्याय में कहे हैं, जातस्य हि ध्रुवोर् मृत्युर् ध्रुवम् जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित। तो प्रश्न ये है कि यदि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अनेक जन्म मेरे हुए हैं और तुम्हारे हुए हैं, तो फिर मान लो कि कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछे तो फिर अर्जुन में और भगवान में समानता हो गई ना, तो अंतर कहां आया? अंतर यहां पर आया, भगवान कह रहे हैं पूर्ण स्मरण मुझे है और पूर्ण विस्मृति अर्जुन तुम्हें। तो भगवान के गुण क्या है? अकोमोडेटिंग ऑपोजिट्स। हालांकि ये जो गुण हैं इसकी बहुत अच्छी से व्याख्या अगले श्लोक में हुई है, तो हम इसके ऊपर चर्चा विस्तार से अगले बार करेंगे, अगले श्लोक जब लेंगे तब। तो अब मुद्दा यहां पर यह है कि भगवान के अनेक जन्म और हरेक जन्म का पूर्ण स्मरण भगवान, न केवल इतना ही बल्कि अर्जुन के अनेक जन्म जितने हुए हैं, अर्जुन ने क्या क्या किया अपने अनेक जन्मों में, उसका भी स्मरण भगवान को है। न केवल स्वयं के बल्कि अर्जुन के भी जन्मों का स्मरण है। तो प्रभुपाद इस बात पर बहुत जोर दिए, श्री भगवान केवल उन्हीं के अंदर ये गुण पाए जा सकते। अब देखिए, भगवान ने इस अध्याय में कहा अर्जुन को, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान विवस्वान, कौन विवस्वान? सूर्यदेव को मैंने ये ज्ञान दिया। अब यदि हम गणना कर देखें तो कितने साल पहले सूर्यदेव को यह ज्ञान भगवान ने दिया होगा? बारह करोड़ वर्ष पहले। बारह करोड़ वर्ष पहले भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया। अब देखिए, हम कौन से मुद्दे पर हैं? श्री भगवान उवाच। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो कलयुग के तथा कथित ढोंगी अपने आप को भगवान कहते हैं, उनको मेमोरी टेस्ट पर लगाओ। मेमोरी टेस्ट क्या है? यहां पर देखिए कि 12 करोड़ साल पहले भगवान ने किसको क्या कहा ठीक ठीक याद है। और न केवल उतना बल्कि इतने करोड़ों जन्मों में क्या कुछ नहीं और उन्होंने कहा, किस किस को क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ याद है। तो कौन जो अपने आप को भगवान कहते हैं इस कलयुग में, 12 करोड़ छोड़ दीजिए, 12 वर्ष अगर लें, बहुत ज्यादा हो गया वो भी, 12 घंटे वो भी अगर पूछे तो कई बार खुजलाकर याद करना पड़ता है ठीक ठीक कि क्या कर रहे थे 12 घंटे पहले, किसी की मदद लेनी पड़ती है। जैसे आजकल हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं कलयुग में, परंतु एक सेलफोन नंबर भी रुको रुको रुको, SMS करना नहीं तो नोट डाउन करने दो, वो 10 नंबर भी याद नहीं रहते। हालांकि पिछले युगों में गुरुकुल के विषय में बताया गया है कि गुरुकुल के बच्चे, सत्युग के गुरुकुल के बच्चे किस प्रकार के हुआ करते थे, कोई कागज पेन वगैरह नहीं हुआ करता था। ये जो कागज पेन का इन्वेंशन हुआ है, ये प्रोग्रेस नहीं है हमारा। हम लोग समझते हैं मैं लिख पढ़ सकता हूं, स्कूल में नोटबुक पेन लेके जाता हूं। पहले की जो स्कूल गुरुकुल, उसमें नोटबुक पेन हुआ ही नहीं करता था। आजकल भी कॉलेजेस में नहीं लेके जाते बच्चे, वो अलग बात है। उसका मतलब ये नहीं कि जो भी प्रोफेसर बोलता है सब याद रहता है, उनको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये बताया गया है कि जब इंसान को लिखने की जरूरत पड़ने लगी, क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ टिका नहीं, जब यहां पर कुछ टिका नहीं इसलिए लिखने की जरूरत पड़ने लगी। देयरफॉर इट इज सेड दैट रीडिंग एंड राइटिंग व्हेन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ह्यूमन बींग्स वर लूजिंग मेमोरी, देयरफॉर दे हैड टू नोट इट डाउन। सो दैट वॉज नॉट प्रोग्रेस, इट वॉज डिग्रेशन। तो सत्युग के जो विद्यार्थी गुरुकुल में जाया करते थे, वहां पर गुरु ने एक बार कुछ कह दिया, उनको संस्कृत में कहा जाता था श्रुतिधर। उन विद्यार्थियों को कहा जाता था श्रुतिधर। श्रुतिधर का अर्थ है एक बार श्रुति, श्रवण कर लिया, धर लिया। जैसे एंट्री टेस्ट उनकी कैसे होती थी, एंट्री टेस्ट, गुरुकुल का एंट्री टेस्ट कैसे होता था, एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। एंट्रेंस एग्जाम ये होता था कि उस बच्चे को 100 फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे रैंडमली, अलग अलग 100 व्यक्ति, और उसको सारे 100 प्रश्न याद रखने हैं और सीक्वेंशियली उसको आंसर देना है, आंसर देना है, फिलोसॉफिकल आंसर देना है। और उस दौरान एक व्यक्ति घंटा बजाता रहेगा और उसको याद रखना है कि जितने प्रश्न उत्तर हुए, जितने समय, 100 प्रश्न 100 उत्तर, उतने अंतराल में, उतने दौरान में कितनी बार वो घंटा बजा। ये तो था एंट्रेंस टेस्ट। तो भगवान यहां पर जब बोल रहे हैं कि स्मरण शक्ति उनकी, सब कुछ उनको याद है, तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो भगवान हैं। इसलिए व्यासदेव जी ने श्री भगवान उवाच ये शब्द इस्तेमाल किए। अब यदि हम हमारा जन्म देखें, इस अवस्था में 9 महीने माता के गर्भ में हम सब रहे, तो जो जन्म की यातना हमारे शास्त्रों में बताई गई है, अब आजकल आधुनिक विज्ञान यातनाओं के विषय में नहीं बताते। श्रीमद् भागवत का जो 3रा स्कंध है, कपिल मुनि देवहूति को शिशु के विषय में बता रहे हैं, और शिशु के विषय में बताते हुए हां जानकारी दे रहे हैं कि कैसे वो बढ़ता है शिशु, जैसे आज ही के सुबह के भागवतम क्लास में कृष्णदत्त प्रभु बता रहे थे कि मेंशन है थर्ड कैंटो में कि जैसे शिशु बढ़ता है वैसे उसका अज्ञान बढ़ता है। अभी आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि जैसे शिशु बढ़ता है वैसे बुद्धि बढ़ती है, उसका ज्ञान बढ़ता है। परंतु जब शास्त्र ये कहते हैं कि शिशु बिना कृष्ण भक्ति के जब बड़ा होता है तो क्या बड़ा हो रहा है? उसका अज्ञान, देहात्म बुद्धि बढ़ रही है। तो जितनी देहात्म बुद्धि बढ़ रही है उतना अज्ञान बढ़ रहा है। तो जो जन्म की यातनाएं हैं, केवल एक प्रकार की यातना नहीं है, इसलिए यातनाएं बताई बोली गई कि इतने छोटे से थैली के अंदर, उसको बोलते भी हैं थैली, उस थैली के अंदर इस आसन में, इस आसन को योग में गर्भासन बोलते हैं। एक ऑथोराइज्ड आसन है योग के अंदर, गर्भासन। अब देखिए, कोई जब योग करता है गर्भासन वगैरह, हमको एक बार एक योगा टीचर सिखा रहे थे गर्भासन, तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट, मान लो कोई योगा टीचर रामदेव बाबा का एक गर्भासन करो 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो किया है हम सबने, हम सब गर्भासन में निपुण रहे 9 महीने इस प्रकार से गर्भासन में। तो ऐसी स्थिति में उस छोटी सी थैली के अंदर, और ऐसे नहीं कि वो कोई बहुत ही सुगंधित थैली है, हवादार है, एसी वेसी लगे हुए हैं, आरामदायक है, नहीं, मल मूत्र सब जो कफवात पित्त उससे, कीटाणुओं से ये घिरा हुआ। तो होता क्या है, और फिर जब वो पैदा होता है, जब पैदा होता है तो जो उसको पीड़ा होती है पैदा होते समय, जिसको अंग्रेजी में वो कहते हैं लेबर पेन, तो जो पीड़ा होती है दोनों माता को और बच्चे को, तो होता क्या है उस दौरान, अब श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब वो गर्भ में होता है शिशु, तो गर्भ की जो पीड़ा है वही उसके लिए इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति पर उसको ला देती है कि वो भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ करता है। और उसके श्रीमद् भागवत में श्लोक बताए गए हैं, जंतुरुवाच, जैसे अर्जुन उवाच है, श्री भगवान उवाच है, तो तीसरे स्कंद में श्लोक है जंतुरुवाच, और वो जंतु किसको कहा गया है, वो पेट के अंदर वो जो शिशु है, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैंने जो जो गलतियां की जिसके वजह से मुझे अब ये एक और जन्म मिला है, फिर से किसी माता के गर्भ में, फिर से इस ऐसी दयनीय स्थिति में, तो मैं अब आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे कृपा करके आप इस मेरी दुखद परिस्थिति से मुक्त कीजिए, और मैं आश्वासन देता हूं कि मैं पैदा होने के पश्चात केवल आपकी भक्ति करूंगा। तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, मैं भजन करूंगा हर लो बाधा, क्यों भूल गया वो सारी बातें, तेरी बदली नजरिया रे। बचपन में हमें गीत गाया करते थे ऐसे, तो भूल जाते हैं पैदा होने के बाद। क्यों पैदा होने के बाद? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है अबोध जात, कि जन्म के अंदर जो दुख और जन्म के समय का जो दुख, वो क्या लाता है? विस्मृति, विस्मृति। तो विस्मृति के दो कारण हैं। एक कारण है वो अत्यधिक दुख पीड़ा, वो कारण है, और दूसरा कारण, जैसे कि अभी हम लोग सब यहां पर आराम से इस कमरे में हैं, पंखे चल रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं आप लोग, कोई ऐसी यातना नहीं हो रही ना प्रवचन के अलावा? हाँ, ऐसे कोई पीड़ा नहीं है? तो अचानक मान लो कि कुछ हो जाए, किसी के पैर पर कोई बड़ा बर्तन गिर जाए या वो खुद नीचे गिर जाए, कुछ भी हो जाए, पीड़ा हो, तो तुरंत उस समय के लिए, जब पीड़ा हो रही है उस समय के लिए आप सब भूल जाओगे और पीड़ा पर इतना, और कई बार पीड़ा पर भी ध्यान नहीं रहता, वो भी भूल जाते हैं कि पीड़ा कौन सी कैसी हो रही है। तो दुख वो अपने साथ विस्मृति को लाता है। पेन ब्रिंग्स अबाउट फॉरगेटफुलनेस। अब कोई पूछे कि प्लेजर, हाँ, इंटेंस पेन एंड इंटेंस प्लेजर बोथ ब्रिंग अबाउट विस्मृति, बोथ ब्रिंग अबाउट फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस ऑफ व्हाट? कृष्णा, ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए माया देवी का प्रोग्राम क्या है? माया देवी का प्रोग्राम है या तो हमें सुख में रखना या दुख में रखना। तो सुख में हम लोग भगवान को भूल जाते हैं क्योंकि मेरे वजह से मुझे सुख मिल रहा है, भगवान थोड़ी दे रहे हैं सुख, मेरे वजह से मिल रहा है। और दुख में कि मुझे इतना दुख हुआ है और वो ही दे रहा है दुख, तो मुझे तो कुछ लेना देना ही नहीं है उस व्यक्ति से, तो और जानबूझ के फिर उनको याद नहीं करना चाहते। तो इसलिए भगवान जब जन्मते हैं तो न तो दुख है न विस्मृति, और हमारा जन्म जो है वो दुख और विस्मृति के साथ हम जन्मते हैं। तो भगवान और जीव में अंतर, जैसे यहां पर श्रील प्रभुपाद की व्याख्या इस प्रकार से हुई है, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। तो बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने की है कि जब भी इस भौतिक संसार में हम परिवर्तन देखते हैं भौतिक स्तर पर, तो परिवर्तन अपने साथ साथ विस्मृति लाता है। और क्योंकि भगवान अपरिवर्तनशील हैं, इसलिए भगवान, ये कारण है जिसके वजह से भगवान की स्मृति पूर्ण रूपेण बनी रहती है। अब परिवर्तनशील हम कैसे हैं? इसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जन्म ये एक परिवर्तन है हमारे अंदर, फिर हमारी वृद्धि होती है, वृद्धि होने के पश्चात फिर ये शरीर अन्य शरीरों को पैदा कर सकता है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। तो हमें लग रहा होगा तो खत्म ना, फिर चालू। जैसे राधानाथ महाराज का हम प्रवचन सुन रहे थे पिछले शनिवार को, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ये जो हमारा जीवन है, अभी हमको कितना लग रहा होगा कि कितने साल से मैं जी रहा हूं, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 हो गए, कईयों के 60 हो गए, कईयों के 70 हो गए, कितने सालों से जी रहे हैं। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि ये हमारा 60, 70, 80, 90, 100 ले लो, वो जो जीवन है वो अवधि, उसकी तुलना किससे की गई है? एक लंबी लाइन है, और ऐसी लाइन जो कि खत्म नहीं होने वाली, न खत्म होने वाली लाइन, और उस लाइन में पेंसिल, एकदम तीखी पेंसिल से कोई एक डॉट लाइन बनी, किसे? डॉट से बनी है ना, तो एक डॉट, और वो हमारा 100 साल वो डॉट के अंदर, और फिर हमको डॉट के अंदर रहते हुए हमको लगता है कितना मैं जी रहा हूं, कितना जीऊंगा, और तो उन्होंने ये सुंदर उदाहरण दिया, इट्स जस्ट वन डॉट। तो हम ट्राई कर रहे थे, आपको मैं एक सुंदर एक लिंक दिखाना चाह रहा था, पता नहीं आज वो ये डोंगल चल रहा है क्या इंटरनेट का। तो इसमें ये लिंक में कुछ ये जो सर्वे निकालते हैं ना ये लोग की पूरे दुनिया में हर क्षण कितने बच्चे जन्म रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितना एक्सीडेंट हो रहा है हर क्षण, ये सब जो एनालिसिस करके वो लोग रिपोर्ट निकालते हैं। तो ये लिंक में उन्होंने रिपोर्ट निकाला है कि रियल टाइम, रियल टाइम अगर आप देखो तो वो लोग पहले तो रिपोर्ट्स कैसे आते थे कि हाँ हर 2 सेकंड में कोई पैदा हो, हर 3 सेकंड में कोई मर रहा है, हर 4 सेकंड में किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसे वो लिख देते थे। परंतु इन्होंने रियल टाइम में वो फ्लैशेस से दिखाया है, अलग अलग इवेंट्स पूरे वर्ल्ड में रियल टाइम में कैसे हो रहे हैं। तो उसे समझ में आएगा कि ये जो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचा अर्जुन, कि अनेक अनेक जन्म और अनेक अनेक मृत्यु, होपफुली चल रहा होगा, देखते हैं। अब देखिए तो पहले यहां पर आप पढ़ लीजिए ठीक से, हाउ ऑफन थिंग्स हैपन व्हेन टॉकिंग अबाउट लाइफ इवेंट्स इन नंबर, से हाउ मेनी पीपल आर बॉर्न इन अ मिनट और हाउ ऑफन समवन डाइज, इट्स हार्ड टू गेट अ गुड ग्रास्प ऑफ एग्जैक्टली व्हाट दैट मींस। आई फाइंड इट मच मोर हेल्पफुल टू सी ग्राफिकली इन रियल स्पीड। तो रियल स्पीड में ये जो फ्लैशेस हो रहे हैं ना आपको हम दिखाएंगे अभी इन रियल स्पीड। सो दिस इज व्हाट वी डिड हियर, दीज आर इवेंट्स अकरिंग अकॉर्डिंग टू देयर स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, सो यू कैन सी इन रियल टाइम हाउ ऑफन वन ऑफ दीज हैपेंस। तो जो जो फ्लैश होके जा रहे हैं उतने समय में वो हो रहे हैं इस समय, आपको समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा कौन से फ्लैश हो रहे हैं देखो, बर्थ और डेथ, मतलब कितनी बार फ्लैश हो गए उतने बच्चे पैदा हो गए अभी, कितनी बार वो जो डेथ फ्लैश हो रहा है उतने लोग अभी तुरंत मर गए। हार्टबीट, हार्टबीट, बर्थ, डेथ, बाकी सब देखो, समवन लॉक्स देयर कीज इन द कार, एयरलाइन फ्लाइट टेक्स ऑफ, प्लास्टिक 50,000 प्लास्टिक बॉटल्स आर प्रोड्यूस्ड, अ डॉग बाइट समवन इन यूएस, समवन गेट्स मैरिड, इसका रेशियो। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये कि आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, जो ये लोग डिस्कवर कर हमको इस तरीके से बहुत ग्राफिकली रियल टाइम रियल स्पीड में बता रहे हैं कि अनेक अनेक जन्म, जो भगवान आज बोल रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि, और जो राधानाथ महाराज ने कहा कि वी आर सिंपली वन डॉट, मतलब यदि भगवान के रियल टाइम में हमारे लाइफ का जर्नी, अर्थात जितने जितने अलग अलग योनियों में हम जन्मे हैं, तो भगवान के रियल टाइम में अगर भगवान देख रहे हैं उसको, तो भगवान कैसे देख रहे हैं कि इसका ऐसे ऐसे जन्म हो रहा है और ऐसे ऐसे मरण हो रहा है, जितना वो फ्लैशिंग हो रहा है आकर जा रहा है। तो इससे एक अंदाजा आ रहा है क्या कि जन्म और मरण कितना ज्यादा टेम्पररी है, टेम्पररी, जो भगवान कहते हैं अशाश्वतम, कि कितना टेम्पररी, परंतु विस्मृति के कारण हमें परमानेंट लगता है। अब कनेक्शन क्या है आज के श्लोक से कि विस्मृति के कारण हमें लगता है कि परमानेंट है। अभी आप लोग, हम लोग सब, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं यहां पर, हम लोग सब यहां पर ये सब जो देख रहे हैं, बर्थ, डेथ, ये जो हार्ट बीट और इतने फास्ट चल रहा है, और भगवान और हमारे शास्त्र कहते हैं कि कैसे हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है, तो फिर हमको लग रहा होगा कि अरे अभी तो कितना प्लानिंग करके रखा है और पूरे हफ्ते भर का, पूरे महीने भर का, साल भर का, कल छुट्टी का दिन है, महाशिवरात्रि है, बहुत सी तैयारियां मैंने की कर रखी है, और ये बोल रहे हैं कि मेरा जीवन ऐसा है। तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक में बताया गया है कि जो हमारा जीवन है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो इस श्लोक में दुर्लभता बताइए, रैरिटी, दुर्लभो मानुषो देहो, ये जो मनुष्य देह है ये प्राप्त करना सबसे पहले कितना दुर्लभ है। देखो वो जो चल रहा है हमको लग रहा होगा कितना आसान है, एक एक फ्लैश में जन्म रहा है, जन्म रहा है, जन्म रहा है, मर भी तो रहा है, और कोई जरूरी नहीं है कि कितने करोड़ों अलग अलग योनियों में से कोई एक विरला वो जन्मेगा मनुष्य योनि। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य देह जो इतना दुर्लभ है, देहिनाम क्षण भंगुर, और ये मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद हम कितने साल इस मनुष्य देह में टिके रहेंगे, जैसे कहते हैं ना कमल दल जल जीवन टलमल, कि कमल दल के ऊपर जो एक बारिश का बूंद वो कैसे टलमल करता रहे, वैसे हमारा जीवन, वैसे हमारा जीवन टलमल करता रहता है। तो अभी हम लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरा तो ब्लड टेस्ट ठीक आया है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में है, शुगर भी कंट्रोल में है, और अच्छा खासा वजन है हाइट के अनुसार, कोई बीमारी भी नहीं है, खानदान में भी कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं, तो जीवन टलमल। तो न्यूज़पेपर हम जब सुबह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं सुबह सुबह, इतने लोग यहां पर मर गए, उतने लोग वहां पर मर गए, कोई एक्सीडेंट में, कोई चलते चलते गिर के हो गया, खत्म। तो हमें लग रहा होगा, जैसे मुझे याद है मैं बंबई में, बहुत साल पहले की बात है ये, गुरुवार का एक प्रोग्राम किया करता था बोरीवली में, जैसे अपना बुधवार का प्रोग्राम, तो वहां पर बोरीवली में एक रेलवे वेलफेयर हॉल है, तो रेलवे वेलफेयर हॉल में हर गुरुवार को सत्संग कार्यक्रम होता था। तो पहली दफा मैंने सोचा कि वहां पर नए लोगों को लाने के लिए गीता कोर्स करते हिंदी में, तो काफी उन्होंने एडवर्टाइज किया और कुछ 40-50 नए लोग गीता कोर्स 3 डे क्रैश कोर्स किया उनके लिए। तो अब देखिए जो व्यक्ति वहां के ऑर्गेनाइजर, उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, तो अब 3rd डे लास्ट डे करीब 50 एंट्रीज जो थे पार्टिसिपेंट्स, उनको वो अभी इन्फॉर्म करना चाह रहे थे कि हमारा हर गुरुवार को कार्यक्रम होता है। तो मैं बैठा हुआ था और उन्होंने माइक्रोफोन लिया, अब वो मुंबई के रहने वाले, वहीं पर पैदा हुए, वहीं पर परवरिश, तो हिंदी उनकी उस टाइप की हिंदी थी। तो अभी हिंदी का एक कार्यक्रम, हिंदी का सत्संग प्रोग्राम, तो उन्होंने हिंदी में अनाउंसमेंट करने की जरूरत की, हिम्मत की हिंदी में अनाउंसमेंट करने की। उन्होंने माइक्रोफोन लिया और बोलते हैं तो आप लोग सब जो 50 लोग आए 3 दिन, थैंक यू, और हमारे प्रभु जी गुरुवार को इनका क्रियाक्रम है और उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा है तो इनका गुरुवार को क्रियाक्रम है, मैं देख भैया अच्छा खासा क्रियाक्रम करा रहे थे, तो इनका गुरुवार को क्रियाक्रम है, आप लोग सब लोग आइए। और क्रियाक्रम के पश्चात भोजन प्रसाद भी मिलेगा आप लोगों को, आप अपने रिश्तेदारों को भी लेके आइए, बहुत अच्छा क्रियाक्रम होगा। तो फिर मैंने तुरंत माइक लिया, इनका मतलब था कार्यक्रम। तो अभी मुझे लग रहा था कि भैया मैं अच्छा खासा नौजवान, मेरा क्रियाक्रम अभी करा रहा है तू, परंतु सच्चाई क्या है, जो हमने श्रीमद् भागवत का श्लोक लिया, देहिनाम क्षण भंगुर, कि हाँ मैं उसके विषय में सोच रहा था अभी, जो मेरे को ये किस्सा याद आया बोरीवली प्रोग्राम का, कि हमारे कार्यक्रम चल रहे होंगे, क्या चल रहे हैं, बचपन से कार्यक्रम चल रहे हैं ना, बचपन में हमारे खेलकूद के कार्यक्रम, फिर जब हम जवान हुए, जवानी के अलग कार्यक्रम जानते हैं आप लोग, फिर बाद में जवानी के पश्चात वो मिडिल एज, उसके कार्यक्रम, तो कार्यक्रम पे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था कि वो जो व्यक्ति अनाउंस कर रहे थे वो एक प्रकार से सही बोल रहे थे कि ये जो इनके कार्यक्रम चल रहे हैं कभी भी क्रियाक्रम भी हो सकता है अगले गुरुवार को। इसे कहते हैं क्षण भंगुर। क्षण भंगुर का अर्थ है कि कार्यक्रम से क्रियाक्रम में एक क्षण भी लग सकता है। और क्षण भंगुर का एक और अर्थ है कि हर क्षण ये शरीर हमारा मरण की ओर जा रहा है। जैसे कि यहां पर ये हम देख रहे हैं कि कैसे जो जन्म और मरण है वो कितना फ्लिकरिंग है। एक भौतिक एनालिसिस इन्होंने किया है, उससे समझ में आ रहा है। और वही चीज आज के श्लोक में भगवान जो बोल रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुना। तो अब ये जो परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, जमीन आसमान का अंतर है हम में और भगवान में, केवल इस गुण को अगर हम लें और विस्मृति और पूर्ण स्मृति को हम लें। तो देखिए, जैसे कि गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, तो वैसे हमारे लाइफ का स्पीडोमीटर बताया गया, यंग मिडिल एज ओल्डर एजिंग, तो गाड़ी का स्पीडोमीटर बढ़ता है तो हमको लगता है बहुत रफ्तार से गाड़ी जा रही है, परंतु लाइफ के स्पीडोमीटर में क्या होता है कि जैसे वो इंडिकेटर आगे जा रहा है स्पीड कम होते जा रही है ना, अब स्पीड कम होते जा रही है। सो दिस इज द आयरनी ऑफ लाइफ स्पीडोमीटर। एक सुंदर मुझे हाल ही में ईमेल आया था, लाइफ डिफाइंड बाय ड्रिंक्स। हम चर्चा किस पर कर रहे हैं, अपना परिवर्तनशील, भगवान जो अपरिवर्तन है और हम क्या हैं, परिवर्तनशील। सो एज 3 to 8 कौन सा ड्रिंक पीते हैं हम, सेरेलैक, या पता नहीं आजकल चेंज हो गया है क्या, फेरेक्स एक आता था, फेरेक्स सेरेलैक आजकल भी वही है, बेबी फूड जनरली। एज 9 to 13 अब बॉनविटा बॉय बन गया है, अब हॉर्लिक्स बॉय, बॉनविटा बॉय। 14 to 17 मान लो कि कोई 14-17 साल का है, उसको सेरेलैक पिलाएगी मां, बेटे सेरेलैक पी नहीं, अभी जोशे जवानी है, कोक पेप्सी पीना है। 18-25 अब थोड़ा और कुछ मिला के, बियर। 25 टू 40 विस्की, एज 40 टू 60 रम, एज 60 टू 70 अब सलाइन अलग तरीके से पीना पड़ेगा, कफ सिरप। फाइनली आफ्टर 70 इयर्स एनी टाइम गंगाजल। तो इसलिए कहते हैं कि पहले से ही अगर गंगाजल पिए तो फिर हमारा उद्धार जीवन भर निश्चित है। अब देखिए बुढ़ापा जो कि एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर परिवर्तन बहुत धीरे धीरे दिखता है, बुढ़ापा आने के बाद, या फिर मिड लाइफ क्राइसिस जिसको बोलते हैं, उसके बाद में फिर क्यों परिवर्तन धीरे धीरे दिखता है? क्योंकि विस्मृति ज्यादा हो रही है, अभी कुछ याद नहीं रहता तो विस्मृति ज्यादा हो रही। जैसे एक एक प्रॉपर बीमारी का नाम है अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स मतलब धीरे धीरे, जैसे रोनाल्ड रीगन जो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे, उनके अंतिम दिनों में उनको अल्जाइमर्स हुआ और वो भूल गए पूरा कि वो कभी यूएसए के प्रेसिडेंट भी थे। तो हम कितना भी बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लें, प्रकृति ऐसी है कि विस्मृति दिला दे, तो अगर हम प्रेसिडेंट भी रहे होंगे किसी कंट्री के और वो भी यूएसए के, वो भी भुला देगी। तो बताया जाता है कि जैसे हमारे शरीर की वृद्धि होती है वैसे हमारे अंदर बुढ़ापे आते आते विस्मृति बढ़ती रहती है, फॉरगेटफुलनेस। और इसलिए जो बुढ़ापा है ये शास्त्रों के अनुसार और लोगों का साक्षात्कार भी है इस भौतिक संसार में कि बुढ़ापा मृत्यु से ज्यादा भयावह है। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी महिला वो बस में चढ़ी, तो बस भरी हुई थी और बूढ़ी महिला है तो किसी का कोई इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं था, तो कंडक्टर ने बोल दिया बोनेट पे बैठ जा भाई, तो बोनेट पे बिठा दिया उसको। फिर दो स्टॉप बाद एक जवान लड़की चढ़ी, तो अभी सभी उठ उठ के जगह दे रहे बैठो बैठो बैठो, और वो बेचारी शर्मा रही थी तो बॉनेट पे बैठी जो बूढ़ी औरत ने कहा बैठ जा, कुछ साल बाद तेरे को भी बॉनेट पे बैठना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है कि सीट से बॉनेट पे या कार्यक्रम से क्रियाकर्म, ये दर्शाता क्या है? परिवर्तनशील जीव जो कि विस्मृति में रहता है। अब केवल परिवर्तन हमारे इस जीवन में जो हम इस शरीर में हैं, केवल वही नहीं, जैसे भगवान गीता के दूसरे अध्याय में बताए हैं कि कैसे देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यथी, कि बचपन से लेके युवावस्था, युवावस्था से लेके वृद्धावस्था, ये एक ही कपल के फोटोज हैं बाय द वे, यहां से यदि शुरुआत देखें उनकी तो ये सब, हम भी अगर हमारा एल्बम निकाल कर देखें जब हम आगे चलकर 70-80 साल के, तो हम ऐसे ही दिखाई भी नहीं देगा वो चश्मा लगा के कि मैं ही था, ये मैं जब 10 साल का था मैं ही था, 25 साल का था मैं ही था, और फिर लोग बोलेंगे वही था। हाँ, पहले हम बोलते हैं मैं ही था, और फिर कुछ साल बाद लोग कहते हैं वही था, फिर वो भी भूल जाते हैं था कि नहीं पता नहीं। तो प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखी कमिंग बैक, उसका कवर पेज है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो मृत्यु के दरवाजे से अंदर जा रहा है और फिर दूसरे शरीर में वो बर्थ या जन्म के दरवाजे से बाहर आ रहा है। तो एक सुंदर एपिटाफ जिसको बोलते हैं, एक टूम के ऊपर ये लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए इसको। तो ये व्यक्ति जो लेटा हुआ मृत व्यक्ति, रिमेंबर मी एज यू पास बाय, एज यू आर नाउ सो वंस वॉज आई, एज आई एम नाउ यू शैल बी, सो बी प्रिपेयर टू फॉलो मी। तो इसे कहते हैं समस्मृति। समस्मृति का अर्थ है कि जब हम बचपन में, हमको कोई अंदाजा नहीं होता। जैसे मुझे याद है मैं जब स्कूल में था तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उनका देहांत हुआ था। तो अचानक समाचार मिला, स्कूल शुरू हो गई थी, 15-20 मिनट हो गए थे, फिर हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे, रास्ते में थे तो बाकी बच्चे दौड़ते हुए बाहर आते, छुट्टियां छुट्टी छुट्टी, क्यों छुट्टी, मोरारजी देसाई गुजर गए। तो हम लोग को कोई रंज नहीं, पता ही नहीं कौन है, छोटे बच्चे, हम लोग जय हो जय हो। तो किसी का जनाजा उठ रहा है और यहां पर हमको छुट्टी की पड़ी है, ये यहां का जीवन है। जैसे एक गांव में एक स्कूल स्मशान भूमि के बगल में था, तो जब भी उस गांव में कोई मरता तो स्कूल में छुट्टी होती, क्योंकि स्मशान भूमि के बगल में स्कूल। तो एक बार दो मित्र रामू श्यामू जा रहे थे अपने स्कूल में, तो बहुत समय हो गया छुट्टी नहीं हुई। तो उन्होंने देखा स्मशान भूमि के बाहर ही दो बूढ़े व्यक्ति बीड़ी पी रहे थे। तो रामू ने श्यामू को कहा, देख हमारी दो छुट्टियां बीड़ी पी रही है। तो अभी उनके लिए, बेचारों के लिए तो इतना बड़ा मृत्यु का समाचार, और किसी के लिए दो छुट्टियां। तो यहां पर भगवान यही कह रहे हैं कि ये जो परिवर्तनशील जीवन है हमारा, ये परिवर्तनशील जीवन ऐसा है कि कोई एक व्यक्ति का जन्म हो रहा है, उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसी समय या हो सकता है उसी परिवार में किसी का जनाजा उठ रहा होगा, किसी की चिता जल रही होगी। तो अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि न केवल एक मनुष्य योनि से दूसरे मनुष्य योनि में आत्मा जाता है और विस्मृति को प्राप्त करता है, बल्कि अब विस्मृति देखिए, यदि वो जीव, वो आत्मा किसी पशु योनि में चला जाए तब उसकी विस्मृति किस हद तक रहेगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद, उन्होंने अपने एक मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशन लॉस एंजलिस में, उन्होंने महतो भयात, जो वो श्लोक है, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो इस श्लोक पर जो महतो भयात, महान भय जीव के लिए क्या है, प्रभुपाद ने कहा जब जीव मनुष्य योनि से गिरकर पशु की योनि में जाता, और पर्पोर्ट में भी प्रभुपाद ने लिखा दैट इज द ग्रेटेस्ट फियर। और प्रभुपाद ने फिर इसको इलैबोरेट किया उस मॉर्निंग वॉक में। प्रभुपाद ने कहा व्हेन द सोल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी ग्लाइड्स डाउन इनटू द एनिमल स्पीशीज, इट इज नॉट दैट ही बिकम्स ओनली वन टाइप ऑफ एवरी स्पीशी, ही हैज टू बिकम एवरी टाइप ऑफ एवरी स्पीशी बिफोर गेटिंग अनदर ह्यूमन बर्थ. अब देखो ये बहुत भयावह है. हमको लग रहा होगा कि 84 लाख योनि है, तो अगर गलती से कोई आत्मा पशु की योनि में चला गया तो फिर 80 लाख बार भ्रमण करके फिर 4 लाख जो मनुष्य योनि में उसमें पहुंच जाएगा. नहीं, प्रभुपाद ने कहा एवरी टाइप ऑफ एवरी स्पीशी. और ये जो 80 लाख हैं मनुष्य के अलावा वो तो केवल ब्रॉड कैटेगरी. जैसे मान लो कुत्ता, एक योनि है कुत्ता. अब कुत्ते में कितने टाइप है? गली का, घर का, कोई वो डॉबरमैन, कोई वो एल्सेशन, कितने अलग अलग है. तो जीव यदि कुत्ते के योनि में चला गया तो उसको हर प्रकार का कुत्ता पहले बनना पड़ेगा. जितने वैरायटीज है कुत्तों के सब बनना पड़ेगा. मान लो मछली की योनि में हर प्रकार की मछली, कीड़े हर प्रकार का कीड़ा, पक्षी हर प्रकार का पक्षी, पेड़ हर प्रकार का पेड़. और कई तो पेड़ ऐसे हैं 5-5, 6-6 हजार साल तक एक योनि, एक आत्मा एक पेड़ की योनि में बंद है. उसके बाद फिर अगला टाइप उस पेड़ का, ऐसे पूरी पेड़ की योनि, फिर नेक्स्ट हायर स्पीशीज, सब टाइप उस स्पीशीज के, फिर नेक्स्ट हायर स्पीशीज. ऐसे कर प्रभुपाद ने कहा इसको कहते हैं महतो भयात. सुनकर डर लग रहा है ना, इसलिए उसको महतो भयात कहा गया. तो ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि फिर समझ में आता है कि हमारे अंदर ये विस्मृति इतनी क्यों है. कि सोचो इतना सब कुछ घूम फिर के, मान लो कि कोई इस जन्म में कोई कोई कहां कहां घूम फिर के आया है, उसको आप पूछो तो बहुत सी सारी चीजें उसको याद भी नहीं रहेंगी. हाँ, यदि हम ही को कोई पूछ ले कि भाई बचपन से लेके अब तक बताओ कि कौन कौन से यात्राएं तुमने की है, ट्रेन में, टैक्सी में, बस में, रिक्शा में, इतनी बार भारत में तो इतना करते हैं, इतनी बार करने के बाद कुछ याद नहीं. तो सोचो इस जन्म में कितनी बार ट्रेन में बैठे, कितनी बार बस में बैठे, कितनी बार रिक्शा में बैठे, याद है किसी को? साइकिल पर, पैदल, नहीं याद. तो वैसे ही अगर कोई पूछे कि बताओ कितनी बार तुम इस योनि में बैठे, कितनी बार उस योनि में बैठे, विस्मृति. और भगवान कह रहे हैं कि इतने अनेक जन्म होने के बावजूद मुझे सब कुछ याद है. तो ये सब हम लोग क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं? ताकि ये समझ में आ जाए श्री भगवान कौन है और श्री भगवान कौन होने चाहिए. तो प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन, अलग अलग प्रभुपाद ने डेफिनेशंस दिए हैं, जैसे यहां पर किसके, ह्यूमन प्रोग्रेस. परंतु ये जो डेफिनेशन प्रभुपाद का मुझे आज के श्लोक के कनेक्शन में बहुत ही स्पेशल लगा. तो प्रभुपाद ने ह्यूमन प्रोग्रेस का डेफिनेशन दिया, व्हेन कंडीशन लिविंग एंटिटी इज टायर्ड ऑफ चेंजिंग बॉडीज, दैट इज ह्यूमन प्रोग्रेस. बहुत ही यूनिक और स्पेशल डेफिनेशन प्रभुपाद का. सिंपल है लेकिन बहुत प्रोफाउंड है. कि वहां से जब जीव मनुष्य योनि में आने के बाद, इसलिए वो जो हमने श्लोक लिया था, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, पहली दो लाइन ये है कि सबसे पहले मनुष्य देह प्राप्त करना दुर्लभ, उसके पश्चात इस मनुष्य देह में टिक पाना दुर्लभ, और उससे भी दुर्लभ इस मनुष्य देह में सत्संग मिलना. वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जो वैकुंठ के प्रिय लोग हैं उनका दर्शन, सत्संग. तो यदि कहें दुर्लभ दुर्लभतरम, दुर्लभतर दुर्लभतरम, कि जैसे होता है ना पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो वैसे बताया गया है कि कैसे वो डिग्री में सबसे रेयर है कि किसी साक्षात्कारी व्यक्ति का संग, और साक्षात्कारी व्यक्ति के संग में साक्षात्कार होना। और प्रभुपाद कहते हैं किसका साक्षात्कार होना, प्रोग्रेस, ह्यूमन प्रोग्रेस की शुरुआत कहां है, कि यह साक्षात्कार होना, मुझे शरीर नहीं बदलना, आई एम टायर्ड ऑफ चेंजिंग बॉडीज। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है काल कृष्ण। काल कृष्ण भगवान को कहा गया है, जैसे कि गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, कि हे अर्जुन काल के रूप में मैं स्वयं विद्यमान हूं इस पूरी सृष्टि में। तो इस पूरी सृष्टि में यदि कोई कहे कि मैं भगवान को मानता नहीं, समय को मानते हो, टाइम को मानते हो, भगवान कहते हैं वही मैं टाइम, टाइम आई एम कालोस्मि। तो भगवान को काल कृष्ण कहा गया है कि भगवान काल के रूप में है, काल के अधीन नहीं, और हम लोग काल के रूप में नहीं है, काल के अधीन है। तो हम लोग कहते होंगे कि टाइम इज मनी, कि जैसे आजकल बोला जाता ना कि बिल गेट्स वगैरह जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो बिल गेट्स के विषय में मैंने एक बार पढ़ा था एक आर्टिकल, कि बिल गेट्स अगर रास्ते से चल रहे हैं और उनके जेब से $100 गिर जाए, क्या गिर जाए, $100 गिर जाए, तो बिल गेट्स अगर झुककर उसको उठाने जाएं तो उतना समय बर्बाद हो जाएगा, उससे ज्यादा वो $10,000 कमा लेंगे अगर वो वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करे। तो उनके समय के विषय में बताया गया था कि हाउ फॉर हिम टाइम एंड मनी आर सेम। तो हां, हम लोग यहां पर इस भौतिक संसार में समय का जो मूल्यांकन करते हैं कि कैसे समय का प्रभाव हमारे ऊपर है और हम समय का इस्तेमाल कैसे कर क्या उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छा। तो आज के श्लोक में जो भगवान ने कहा है कि जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, कि भूतकाल में जो कुछ हुआ और वर्तमान में जो भगवान अर्जुन के साथ रथ पर हैं और भविष्य में जो कुछ होने वाला है, वेदहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, आगे क्या है, भविष्यानि च भूतानि। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि भूत वर्तमान और भविष्य तीनों भगवान जानते हैं। तो ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर काल का डिवीजन हुआ है हमारे इस जीवन काल में भी अगर हम देखें, तो इसके वजह से हम लोग काल के अधीन और उसके वजह से विस्मृति का हम शिकार बनते हैं। और क्योंकि भगवान कालातीत हैं, इसके ऊपर है, काल कृष्ण है, कालोस्मि है, इसलिए उनके लिए भूत वर्तमान भविष्य नहीं। तो भूत वर्तमान भविष्य के वजह से विस्मृति होती है, और जो भूत वर्तमान भविष्य के परे है, काल के परे भगवान, तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण ज्ञान है सबका। अब बद्ध जीव क्या कर रहा है कि काल के अधीन रहते हुए काल को रोकने की कोशिश कर रहा है, कैसे? जो अभी आधुनिक आविष्कार हम लोग सब मनुष्य समाज में किए हैं, तो किसी भी कैसे प्रकार से, जैसे कि ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, क्या है ये, इनकी तो आजकल साबुन और क्रीम के नाम भी ऐसे हैं, एंटी एजिंग सोप, एंटी एजिंग क्रीम, को इसको लगाओ तो फिर आपकी उम्र उल्टा जाएगी, आप एंटी एजिंग है, आप फिर बूढ़े ही नहीं होगे। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब के द्वारा कि हाँ भाई अगर झुर्रियां आ गई तुम्हारे चेहरे पर तो उसको खींचतान के फेसलिफ्ट बोलते हैं, झुर्रियां निकाल दो, रिंकल फ्री क्रीम, रिंकल फ्री लाइफ। तो ऐसे आप, आपके बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो हमारे पास क्या है, डाई, डाई बिफोर यू डाई, इवन इफ यू डाई स्टिल यू विल डाई। तो बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो उसको ये कर लो, काले कर लो। दांत अगर गिर रहे हैं, आर्टिफिशियल दांत लगा लो। कान से सुनाई नहीं दे रहा है, यंत्र डाल दो उसके। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा पहन लो। अच्छा नहीं लगता चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस पहन लो, वो भी अच्छा नहीं लगता, हम लेजर से निकाल देंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, हाँ अच्छी डिस्कवरीज हैं, लेकिन एक प्रकार से हम लोग क्या ऐलान कर रहे हैं, समय को ऐलान कर रहे हैं। ये जैसे रोकने का प्रयास कर रहा है ना, पेंडुलम को रोकने का प्रयास कर रहा है, कि हम समय को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ हद तक तो कई कहते हैं हम मृत्यु को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति के पास यमराज जी आ गए, और अकस्मात यमराज जी आ गए, जानते हैं ना यमराज जी, तो यमराज जी अचानक आ गए, तो ये व्यक्ति अभी ऑल ऑफ अ सडन यमराज जी आ गए, तो उसने सोचा कि चलो यमराज जी को थोड़ा अच्छा खाना पीना खिलाता हूं, सुला देता हूं थोड़ा। तो यमराज जी आ गए, बोले भाई तुम्हारा नंबर लिस्ट पे है, सबसे पहले लेने आया हो कि खाना पीना क्या? अरे नहीं, अभी जाना ही है तो थोड़ा आपका सत्कार करते हैं। तो वो नींद की गोली खिला देता है यमराज जी को। यमराज जी सो जाते हैं खाना पीना खाने के बाद। तो ये क्या करता है, लिस्ट निकालता है यमराज जी की, देखता है बहुत सारे पूरे मोहल्ले के लोगों को लेने आए हैं, तो अपना नाम सबसे लास्ट में कर देता है। कुछ 100 लोग रहते हैं उस दिन के लिए, उनकी लिस्ट में ले जाने के लिए, तो अपना नाम सबसे लास्ट में, ऊपर से सबसे लास्ट में कर देता है। फिर यमराज जी जब उठते हैं तो एकदम उनको अच्छा लगता है, बोला बहुत मेरे को इतना फ्री, टेंशन फ्री मेरे को लगा आपके घर में, मैं सोया अच्छा लगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपका नाम लिस्ट में पहले था, मैं नीचे से चालू करता हूं। इसे कहते हैं काल का प्रभाव, कि कोई अगर अपना नाम लिस्ट में पहला नाम से निकाल के आखिरी भी कर ले, यमराज को नींद की गोली देके भी सुला दे, फिर भी प्रभुपाद कहा करते थे एक व्यक्ति यमराज से बचने के लिए उसने अपने पूरे शरीर पर मल लेप लिया, विष्ठा, सोचा कि यमराज जी अब निकट नहीं आएंगे, बदबू आती होगी, तो यमराज जी भी, वो भी महाजन है, बुद्धिमान बहुत है, तो सुअर को लेके आ गए। सुअर को कहा तू पहले नाश्ता कर ले, फिर मैं शुरू करता हूं। सो लिविंग एंटिटी इज ट्राइंग टू स्टॉप टाइम फैक्टर, क्या कहते हैं, टाइम टाइड वेट फॉर नन, और इस्कॉन में हम कहते हैं टाइम टाइड एंड महाप्रसाद ऑल्सो वेट फॉर नन। अब ये मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग इमेज मिला, हम बोलते हैं ना टाइम बॉम्ब, यानी इट इज अ टाइम इज अ बॉम्ब, नॉट जस्ट टाइम बॉम्ब बट टाइम इज अ बॉम्ब। तो यहां पर क्या बताया गया है कि हमारा जो हृदय इतना धड़क रहा है, माई हार्ट इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट अगेन यू विल डाई अगेन यू विल टेक बर्थ. तो जैसे यहां पर जैसे जन्म हमारा होता है ना, लगा दिया उसको, क्या बोलते हैं उसको, वात वात. तो जो बॉम्ब होता है, बॉम्ब की जो वात होती है, वात को जन्म होते ही क्या काल क्या करता है, लगा देता, छोड़ देता है. फिर हम लोग घूम रहे हैं, वो कईयों का लंबा होता है वात कईयों का छोटा होता है, तो ऐसे बीट कर रहा है, बीट कर रहा है, बीट कर रहा है. और समय या काल का प्रभाव ऐसा है कि फिर एक समय ऐसा आएगा बूम, जो फट जाए उसको कहेंगे मृत्यु. इसलिए हम उदाहरण देते हैं कि ये मनुष्य शरीर बहुत सोफिस्टिकेटेड है. हाँ, इसके अंदर जो हमको अलग अलग प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त कर कर जो दी गई हैं, परंतु ये उस व्हीकल के जैसे, मान लो कि कोई आपको सबसे सोफिस्टिकेटेड मर्सिडीज कार ला कर दे जिसके अंदर सब कुछ हाईटेक है, BMW, और कहे कि कार आपकी, केवल प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर टाइम बॉम्ब फिट है, लेकिन कार आपकी, तो कितने सुकून से उस कार को हम चलाएंगे. कि ड्राइविंग लाइसेंस भी है, कार भी हमारी है, टैंक भी फुल है, लेकिन वो बोलते हैं ना कंडीशन अप्लाई होता है हर समय, किंतु परंतु लेकिन आ जाता है कि टाइम बॉम्ब कहीं पर फिट है, पता नहीं कहां है, और ये भी पता नहीं कि कब फटेगा. तो वैसे ही ये हमारा मनुष्य शरीर, इसमें हार्ट में कोई बॉम्ब फिट हुआ है, कभी लीवर में, कभी किडनी में, और उस पर भी वो वात जलाकर छोड़ दिया काल ने. तो कब तक ये किडनी चलेगी, कब तक लीवर चलेगा, कब तक हार्ट चलेगा, कोई ठिकाना नहीं. क्षण भंगुरा देही नाम क्षण भंगुरा. तो ये भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं. अब भगवान कहे हैं, तवच अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं. तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि एक तो अर्जुन को डायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं. तो हमारे बल्देव विद्याभूषण इस पर टीका करते हैं कि जब भगवान अर्जुन को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा जन्म हर समय मेरे साथ ही हुआ है, घबराओ मत. क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं. जैसे नर नारायण, उसमें से भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में और नर के रूप में अर्जुन, और इस जन्म में कृष्ण और अर्जुन. तो ऐसे जब भी भगवान को गीता का संदेश इस प्रकार से देना, तो अर्जुन जो भगवान के नित्य पार्षद हैं अवतरित होते थे. अर्जुन के द्वारा भगवान हमको समझा रहे हैं कि जो अन्य जीव हैं, जो अपने कर्मों के वजह से जन्म ले रहे हैं, अर्जुन भगवान के प्रेम के वजह से भगवान के साथ जन्म लेते हैं, और बाकी हम लोग जीव जो हैं कर्मों के वजह से जन्म लेते हैं. तो भगवान ने अब अर्जुन को परंतप इस श्लोक में कहा है. तो दो अर्थ परम तप के बताए गए हैं, शत्रु को तपाने वाला और परम तपस्वी. तो भगवान अर्जुन को यह बोल रहे हैं कि यदि अर्जुन कोई परम तप भी क्यों ना हो जाए तुम्हारी तरह, फिर भी वो अपने पिछले जन्मों को याद नहीं कर पाएगा. इसलिए ये जो आज के श्लोक में एक बहुत विशेष गुण भगवान का, दो ऑपोजिट्स. इस संसार में यदि कोई बचपन में पुनर्जन्म, पिछला जन्म अपना याद भी कर लेता है, तो उसका नाम बुक में आता है, डॉक्यूमेंट्री बनती है कि इसको अपना पिछला जन्म याद आ गया, पिछला एक जन्म, और वो भी बचपन में कुछ 3-4 साल 5 साल तक उसको कुछ याद रहता है, उसके बाद वो भी भूल जाता है. तो कितना उस पर गौर किया जाता है. तो यहां पर भगवान अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों के विषय में सारी स्मरण शक्ति मेरी बनी हुई है. तो कोई व्यक्ति बहुत बड़ी तपस्या भी क्यों ना कर ले, या जिसके अंदर कोई इतना शारीरिक बाहुबल अर्जुन के अंदर जो था कि शत्रुओं को तपाने वाले वो, परंतु उसके द्वारा भी ये स्मरण शक्ति उसको प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्रभुपाद इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाए हैं, जैसे एमनेजिया जिसको कहते हैं। अब एमनेजिया क्या है, जैसे हमारा ये जो एरिया जहां पर खाली दिख रहा है आपको मस्तिष्क का, वो है मेमोरी। तो स्मरण शक्ति, एमनेजिया मतलब याददाश्त हमारी चली जाना। तो जब हमारी याददाश्त चली जाती है तो हमको लग रहा होगा कि भाई अभी तो मुझे याद है मेरा नाम क्या है, मैं कौन से परिवार से हूं, मेरा सरनेम क्या है, माता पिता का नाम क्या है। यहां पर एमनेजिया उसके विषय में नहीं कहा गया है, एमनेजिया के विषय में कहा गया है कौन सी याददाश्त हम खो बैठे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, भगवान श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, भक्ति एकमात्र उपाय है इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का। ये सब हम जो भूल गए हैं इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एमनेजिया। और एमनेजिया के विषय में एक व्यक्ति ने मुझे एक आर्टिकल भेजा था, आई हर्ड अ रियली फनी जोक अबाउट एमनेजिया एंड आई डोंट रिमेंबर इट। और ये बात सच है, हमको ये केवल एक फनी कोई क्लिपिंग ऐसा लग रहा होगा, परंतु ये बात सच है कि हम इस बात को भी भूल गए हैं कि हमें एमनेजिया है। तो प्रभुपाद ने वो जो मॉर्निंग वॉक में एमनेजिया का एग्जाम्पल दिया, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, वी हैव इवन फॉरगॉटन दैट वी हैव फॉरगॉटन कृष्णा। इस हद तक विस्मृति हुई है, हमारी याददाश्त चली गई है। तो एक सुंदर वीडियो इसके संदर्भ में एक दो मिनट का आपको दिखाने चाहेंगे कि भगवान हमको कैसे याद दिला रहे हैं, जस्ट टू मिनट्स स्विच ऑफ द लाइट्स, कैसे भगवान हमको याद दिला रहे हैं हमारी याददाश्त को फिर से लाने के लिए। तो ये जो गॉड विस्पर्स है, मतलब भगवान हमारे कानों में अलग अलग तरीके से विस्पर करके बोल रहे हैं कि भाई क्या तू भूल गया है। और बहुत बार हम उसको न सुनकर हम केवल जो नहीं सुनना चाहिए उसको सुनते रहते हैं। कृष्णा. सो दिस इज कॉल्ड गॉड्स विस्पर. गीता में भी भगवान ने कहा, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूरयो, कि रोज हम जल पी रहे हैं. भगवान कहते हैं कि उस जल के अंदर का जो स्वाद है मैं हूं. और भगवान स्वाद के रूप में क्यों आए हैं जल में? याद दिलाने के लिए. रोज सूर्य की रोशनी में हम जाते हैं, सूर्योदय देखते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं याद दिलाने के लिए. तो ये भगवान का प्रयोजन है. अब देखो, हमारा जो मन है, शास्त्रों में मन को नियंत्रण में लाने के लिए कहा गया है हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, स्टडी इंटेलिजेंस. और स्टडी इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? मेमोरी. जैसे आग के अंदर हाथ न डालना, हम क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हमारी बुद्धि कहती है कि पहले तूने चटका खाया है या किसी ने खाया है चटका, तो इसलिए वो मेमोरी से, वो हमारे अंदर के हार्ड ड्राइव से, उसके मेमोरी स्टिक बोलते हैं ना उसको भी, तो हमारे मेमोरी स्टिक से बाहर निकाल के बोलते हैं कि आग में हाथ डालने से जल जाएगा. तो हम उसको कहते हैं विवेक बुद्धि भी, डिस्क्रिमिनेशन, कि क्या एक्सेप्ट करना है क्या रिजेक्ट करना है. बुद्धि के अंदर जो ये मेमोरी का फंक्शन है उसके कारण हम पता लगा सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए. अब प्रश्न है कि हमारे अंदर ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी कहां से बनती है, या मेमोरी जो बनी है उसको बरकरार कौन रखता है? तो भगवान गीता में 15वें अध्याय में कहते हैं, किसको याद है वो श्लोक? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञान मत्त स्मृति. वहां पर भगवान कहते हैं कि मेरे वजह से स्मृति और अपोहनम च फॉरगेटफुलनेस, ये दोनों. तो परमात्मा जो हमारे हृदय में है, वो जब हम उनकी तरफ अपना मुख करते हैं, तो परमात्मा जो है वो हमें फिर दिखाते हैं कि वास्तविक हमारा जीवन क्या है. इसलिए प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, उपनिषद का उदाहरण है ये, कि आत्मा और परमात्मा एक ही डाली के दो पंछी. एक इस तरफ देख रहे हैं, जो जीव है वो भगवान की तरफ देख नहीं रहा, उन्मुख. इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे. भगवान भी निकट है, माया भी निकट है, जीव भगवान को भूलकर मुंह फेर कर जो बैठा हुआ है, तो माया जो है वो झपटिया धर झपट कर पकड़ लेती है. और केवल करना क्या है हमें? उस स्मृति को फिर से लाने के लिए भगवान की ओर अपना मुख करना है. तो कुछ उदाहरण हम लेंगे कि भगवान ने कैसे स्मृति उनकी बनाए रखी अपने विषय में. तो भरत महाराज कि जिन्होंने पूरा राज्य छोड़कर वो वैराग्य का जीवन अपनाए और वन में गए तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, और फिर वो एक हिरण के प्रति कृपालु हो गए और हिरण से आसक्त हो गए, हिरण में पैदा की योनि में पैदा हुए, परंतु भगवान ने फिर भी उनकी स्मरण शक्ति बनाकर रखी, क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी. तो जो भक्ति हम करते हैं, भगवान उसका जो स्मरण है वो हर समय बनाकर रखते हैं. जब हम इच्छा करते हैं तो उसको भगवान हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं. जैसे कि गजेंद्र का उदाहरण, गजेंद्र एक हाथी बन गया जो कि अपने पिछले जन्म में बहुत बड़ा वो राजा था, इंद्रदुम्न महाराज उनका नाम, और शाप मिलने के वजह से उनको वो हाथी का शरीर प्राप्त हुआ. परंतु क्योंकि उन्होंने प्रामाणिकता से भक्ति की थी, इसलिए इंद्रदुम्न महाराज हाथी के योनि में भक्ति को याद रखे। तो वो जो भक्ति उनको याद रही वो किसकी कृपा से? भगवान अंतर्यामी रूप में जो है अंदर। और अजामिल का उदाहरण जो हम इतने बार चर्चा किए हैं कि अजामिल कुकर्म में लगा हुआ इतना बड़ा पापी बन गया, उसने सब ब्राह्मण के कार्य भक्ति के कार्य सब छोड़ दिए, इतना बड़ा पापी अजामिल बन गया, परंतु क्योंकि उसने भगवान श्री नारायण की भक्ति की थी, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण क्यों रखा? हालांकि इतना बड़ा पापी बन चुका था, वो 80 साल का हो चुका था पाप करते करते, परंतु फिर भी अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा जो कि वैश्या से पैदा हुआ, क्योंकि उसने पहले उस वैश्या से विवाह करने से पहले उसने नारायण शिला की भक्ति की थी, उसके घर पे नारायण शिला थी, तो भगवान ने वो नारायण का उनका स्वरूप और उनका नाम उसके स्मृति में बनाए रखा, और इसलिए उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, जिसके वजह से यमदूतों से बचा, आगे चलकर वो भगवत धाम को प्राप्त हुआ। तो फाइनली निष्कर्ष क्या है आज के पूरे श्लोक का, जो प्रभुपाद का ये सुंदर वाक्य, ह्यूमन प्रोग्रेस की शुरुआत कहां से होती है? व्हेन कंडीशन्ड लिविंग एंटिटी इज टायर्ड ऑफ चेंजिंग बॉडीज। तो यदि इस मनुष्य जीवन में हम थक जाएं, इस साक्षात्कार में आ जाए कि मुझे अब और शरीर प्राप्त नहीं करने, तो वो है हमारे मोक्ष का लक्षण, और वहां से हमारा जो मोक्ष का पथ है उसकी शुरुआत होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अगले श्लोक में भगवान श्री भगवान उवाच अपने अजन्मा और अविनाशी होने के गुणों के विषय में भगवान बताने वाले। आज के श्लोक में भगवान ने कहा कि कैसे वो जन्म लेते हैं और फिर भी विस्मृति नहीं होती उनकी। अगले श्लोक में भगवान ये अजन्मा कैसे हैं और अविनाशी कैसे। तो आपको एक खुश खबर हम देना चाहते हैं, हमारे नासिक मंदिर में आने वाले महीने में दो बहुत ही विशेष महानुभाव संत आने वाले हैं। सबसे पहले तो भक्ति चारु महाराज आ रहे हैं। तो भक्ति चारु महाराज, आज ही मेरी बात हुई तो 21 मार्च को, हालांकि हम चाह रहे थे कि हमारे उत्सव में वो आ सके 23 मार्च के, तो उस समय तो वो वाड़ा में है हमारे इको विलेज गोवर्धन फार्म, तो वो एग्री हो गए। जब रिक्वेस्ट उनको हमने किया तो एक दिन के लिए, फ्राइडे है 21 मार्च, उनका यहाँ पर बड़ा भव्य सत्संग कार्यक्रम हम लोग रखने वाले हैं 21 मार्च को, तो आप लोग सब याद रखिए इस प्रोग्राम के विषय में। और इसके पश्चात चंद्रमौली महाराज आ रहे हैं 22 और 23 मार्च, चंद्रमौली महाराज उन्होंने कंफर्म किया है। तो ये सीरीज में ये दो महानुभाव आ रहे हैं, और 21, 22 और 23 ये ऐसे हमारा इस साल का ब्रह्मोत्सव का प्रोग्राम रहेगा। तो ये खुशखबर हम आप लोगों को देना चाहते थे। जय श्री प्रभुपाद की जय।